आपके CSR का स्ट्रक्चर उन इश्यूज को देखकर बनना चाहिए, ना सिर्फ ये कि मेरे को क्या पसंद है। आपके घर में जितने लोग हैं, आपके जो काम करते हैं, आपके बर्तन करने आती है, या आपके ड्राइवर है, या आपके और भी हेल्पर्स हैं, आप उनके बच्चों से पूछो कि उनका एजुकेशन कैसा चल रहा है, उनके से पूछो उनकी हेल्थ में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, उनका न्यूट्रिशन लेवल कितना है, क्या वो बच्चा स्टंटेड ग्रोथ के थ्रू प्रोसेस कर रहा है या पास कर रहा है, या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर आप उन बच्चों की ही आप देखभाल कर लो, इसमें पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, मोटिव इज इम्पोर्टेंट।
एक लिखना और बेहतरीन लिखना एक राइटर के लिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखना।
अच्छा एक बात बताइए, भावनाएं हिंदी में ज्यादा कम्युनिकेट हो जाती है या अंग्रेजी में?
मेरी तो हिंदी में भावनाएं ज्यादा होती है सर।
यही वजह है, पोएट्री का टाइटल है पेंसिल का सिक्का। बचपन की बात है, स्कूल की बहुत याद आती है, वो दांतों से चबी पेंसिल बहुत कुछ याद दिलाती है, वो लिखते थे हम कम चबाते थे ज्यादा, टीचर भी करती थी मना पर क्या फायदा, बिना पेंसिल चबाए नहीं लिखा जाता था। मेरी काफी रिसर्च है उसमें, मैंने लिखा वी ऑल हैव जिंक इन आवर लाइव्स। उसके दो भाग हैं, एक भाग है गैल्वनाइजेशन बिजनेस और एक भाग है हेल्थ से रिलेटेड। ऐसे रतन टाटा जी जैसे और भी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको अगर आप अपना हीरो बनाएं तो आप आपका लेवल ऑफ ग्रोथ लाइफ में बहुत अलग हो जाता है।
हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। ये एक बहुत ही बेहतरीन लेखक भी है, कहानीकार भी है, एंड बहुत ही जाने माने कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट भी है। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आके।
पवन जी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपने शुरुआत की?
हाँ, जर्नी तो कहते कभी कभी ना कुछ चीजें परिवार में पनपती है, बनती है, और हमें लगता है कि जैसे घर के सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो अपने आप ही आपको प्रेरित करते हैं कि आप कुछ उसी लाइन में या तो जाओ। और कभी कभी बच्चे वो अडॉप्ट करते हैं जो उनके पिताजी कर रहे होते हैं।
जी जी।
तो मैं 6 साल का था, छोटा, और 6 साल में मैंने पहली जर्नी करी यहाँ से पूना, वो भी अकेले।
ओके।
अपने चाचा के पास, नाउ ही इज ब्रिगेडियर जनरल।
आप 6 इयर्स के थे और अकेले आप?
हाँ, मैं कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैंने दिल्ली से पूना स्लीपर क्लास में एक परिवार के सहारे मैंने एक जर्नी ट्रेवल की अपने चाचा के पास, नाउ इज ब्रिगेडियर जनरल, उस टाइम पे वो लेफ्टिनेंट थे। तो मैं मानता हूँ मेरे जो परवरिश है या जो मेरा डिसिप्लिन कह लीजिए या टाइम मैनेजमेंट कह लीजिए या एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, वो मेरे चाचा की देना है।
okay.
उन्होंने मुझे साइकिल सिखाया, उन्होंने मुझे स्कूटर सिखाया, उन्होंने मुझे हॉर्स राइडिंग सिखाया। उनका जो काम करने का तरीका था, जैसे आर्मी में होता है कि आप हर चीज का एक टाइम टेबल बनाते हो, तो वो मेरा सुबह उठ के एक टाइम टेबल बनाते थे जिसमें हर चीज की अपनी अपनी एक ड्यूरेशन होती थी और टाइम होता था,
क्योंकि उसमें डिसिप्लिन को काफी फॉलो किया जाता है, आर्मी वाले काफी फॉलो करते हैं।
उनका जड़ ही वही है ना, डिसिप्लिन अगर नहीं है तो फिर तो आर्मी में कुछ है ही नहीं। तो डिसिप्लिन की वजह से काफी चीजें अपने आप ही स्ट्रीमलाइन हो जाती है। तो वहां था मैं, उसके बाद में करीब उनके साथ में मैं 3-4 साल रहा, फिर दिल्ली आया। और दिल्ली आने के बाद में हमारे फादर जो है रेडियो प्रोग्राम्स वगैरह बहुत लिखते थे, तो उसमें एक्टिंग शुरू किया और धीरे धीरे करके लिखना भी शुरू किया।
ये किस एज में आपने किया सर?
ये मैं था, समझ लीजिए, 10th 11th में रहा हूँ। तो 10th 11th में मैं कुछ टीवी सीरियल्स में काम भी कर रहा था और रेडियो पे बहुत प्रोग्राम। मैंने रेडियो पे अगर मानूं तो मैंने कम से कम नहीं तो 3,000 रेडियो प्ले किए होंगे।
3,000।
और
कौन कौन से टीवी सीरियल्स में आपने काम किया सर?
टीवी सीरियल में मैंने मिल्खा सिंह भी किया है, और एक कहानी था निर्मला वॉज वेरी फेमस जिसके से नेशनल अवार्ड मिला। और भी बहुत सारे सीरियल थे। और एक उस वक्त में एक जैसे कहते हैं ना कि आप दूरदर्शन एक ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर धीरे धीरे हमारा कलर हुआ। तो एक सीरियल ऐसा भी था जिसमें आधा ब्लैक एंड व्हाइट था और आधा कलर हुआ, तो वो एक टाइम था। उसके बाद में ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में दोनों लिटरेचर किया, इंग्लिश हिंदी दोनों लिटरेचर किया, फिर एमए किया, इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद मैनेजमेंट किया एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में, उसके बाद में एक कोर्स किया मैन पावर रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। बस यही पढ़ाई है, पढ़ाई लिखाई है। उसके बाद में बहुत यंग एज में जॉब लग गया था, 22 साल में आई ज्वाइन कपार्ट एज एग्जीबिशन ऑफिसर, और 89 में मैंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ज्वाइन किया यूपीसी क्वालिफाई करके, और वहां पे 11-12 साल काम किया, फिर 8 साल में
यंग एज में आपने सर यूपीएससी क्लियर कर लिया।
हाँ, मैं मतलब यूपीएससी के कई कैडर्स होते हैं, 23 साल की उम्र में मैं गस्टर्ड ऑफिसर बन गया था, तो मुझे भी पूरी नहीं थी मेरी और बहुत पतला था, तो और गस्टर्ड ऑफिसर की स्टैंप होती है, तो मैं जब डीवीपी में मेरी पोस्टिंग हुआ तो पहले तो लोग मानते भी नहीं थे कि ये 23 साल का लड़का है गस्टर्ड ऑफिसर है, क्योंकि सब मेरे से बहुत बड़े थे, 22 साल 23 साल बड़े थे, तो वो एक 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 रहता था हमेशा कि एक बच्चा ट्रीटमेंट होता है ना कि हाँ अरे ये तो अभी आयस की तो मुझे भी पूरी नहीं है, एक वो था। लेकिन वहाँ पे पहले ही साल में मेरे को साउथ भेजा गया गवर्नमेंट की तरफ से, कर्नाटका केरला आंध्रा तमिलनाडु में पब्लिसिटी देखने के लिए। आई थिंक वो एक ऐसा टाइम था जो लर्निंग के हिसाब से बोलूं तो बहुत लर्निंग है,
क्योंकि डिफिकल्टीज आई थी सर वहाँ पे।
वो टाइम मेरे ख्याल से साउथ का सबसे टफ टाइम रहा है। उस टाइम में राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उसी टाइम में गल्फ वॉर हुआ, उस टाइम में उस वक्त एलटी इश्यू चल रहा था, राजकुमार वहाँ के बहुत फेमस एक्टर हैं वो किडनैप हुए,
काफी चैलेंजिंग रहा होगा फिर उस टाइम में।
हाँ हाँ, और एक कावेरी इशू वहाँ पे बहुत
भारी, स्टार्टिंग जर्नी ही चैलेंजेस के साथ हुई।
हाँ, वो कहते हैं बचपन में सीख लो तो आगे काम आता है,
बिल्कुल।
तो वो मैंने हमेशा उसको डिफिकल्टीज को ये समझा कि शायद ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे मैं अगर आज इस एज में इसको हैंडल करना मैं सीख जाता हूँ तो बहुत बड़ी बात होती है। और इन सबके बीच में हम वहाँ पे चेन्नई में और बैंगलोर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर रहे थे, तो एक मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में जब आप सक्सेस अचीव करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग हो जाता है,
बिल्कुल।
सरेंडर आप नहीं करते हो, आप उन सर्कमस्टेंसेस को अपॉर्चुनिटीज बनाते हो।
तो उन चैलेंजेस को कैसे आपने,
देखो हमारे वहां पे जो हमारी उस वक्त में डायरेक्टर थी फिल्म फेस्टिवल की मैडम दीपक संधू, वो खुद अपने आप में इतनी वाइब्रेंट थी, एनर्जी से इतना उनका ज्यादा होता था कि वो खुद वे आउट निकाल के आपको सामने देती थी। उनका एक ही था कि आप जिस पर्पस के लिए आए हो उस पर्पस का ध्यान रखो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना पर्पस और प्रोसेस दो चीजों पे ध्यान रखने की बजाय सब चीजों पे ध्यान रखते हैं। अगर आप प्रोसेस, आपका रोड मैप जो है, अगर आप उस प्रोसेस में स्ट्रांग हो तो आप अपना पर्पस अचीव कर लोगे जो आपका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आप प्रोसेस के अंदर में इश्यूज और प्रॉब्लम्स निकालोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव आपका नहीं होगा।
बिल्कुल।
उस टाइम पे फोकस बहुत अच्छा था और बात, क्योंकि सीनियर सब बहुत सीनियर थे तो उनकी बात बहुत ज्यादा समझ में भी आती थी, ग्रास्प भी होती थी। बस वो एक ही चीज पकड़ के रखी कि हाँ जिस काम के लिए है उस काम को करना ही करना है। दैट वाज अ गुड अचीवमेंट, और मैं भी समझता हूँ कि उतने सर्कमस्टेंसेस में वहाँ पे वो काम करना अपने आप में सभी के लिए बहुत अच्छा,
बहुत लर्निंग रहा है आपके लिए।
हाँ हाँ, बहुत बहुत लर्निंग। और वहाँ पे फिल्म एक्टर से डील करना, बिकॉज फिल्म फेस्टिवल में हर तरह के लोग आते हैं, डायरेक्टर्स थे वहाँ पे, बहुत सारे एक्टर्स थे, उनके साथ मिलने का मौका मिला,
बिल्कुल,
और उनसे भी सीखने को मिलता है।
सर आपने क्या कहते हैं कम्युनिकेशन फील्ड को ही क्यों चूज करा,
बहुत लोग पूछते हैं मेरे से, कभी कभी जीन्स में आता है। फादर हमारे बहुत अच्छे राइटर भी थे और बहुत अच्छे एक्टर भी थे, और डायरेक्शन उन्होंने बहुत बाद में भी शुरू किया।
एक्टर भी थे मतलब उन्होंने टेलीविजन पे काम किया,
पापा ने टीवी पे भी काम किया, रेडियो पे बहुत अच्छा काम किया, रेडियो के लिए बहुत लिखा, बहुत लिखा, छोटे छोटे रेडियो प्रोग्राम्स लिखना, सीरीज लिखना, तो उनके साथ में जब बैठ के वो सुनाते थे, कभी कभी हम ड्रामेटाइज भी करते थे। तो कम्युनिकेटर के लिए दो चीज़ें बड़ी एसेंशियल हो जाती हैं, एक आप अपनी बातों से आप कितना जल्दी किसी को कन्विंस कर सकते हो, उसका पहला, दूसरा उसका होता है वो कितना अच्छा लिख सकता है। जब वो लिखे तो लोग जब उसको पढ़ें तो लोगों को लगना चाहिए कि जैसे उनके सामने वो सब चीजें, वो घटनाएं उनके सामने, आंखों के सामने घट रही है।
बिल्कुल।
तो फादर से हमने ये सीखा कि जो वो लिख रहे हैं उसको हम कैसे अडॉप्ट करें। फिर धीरे धीरे हमने भी लिखना शुरू किया। okay. वो एक्सेप्टेंस उसका शुरू हुआ। फिर रेडियो प्रोग्राम्स लिखे, रेडियो का मैंने एक बहुत बड़ा सीरियल लिखा चलो गांव की ओर, और एक गांव विकास की ओर, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बेसिस के ऊपर में था, ये गांव में कितना विकास हो रहा है, उसका जिंगल भी बनाया। और ऐसे ही कुछ टेलीफिल्म्स लिखी, शॉर्ट फिल्म्स लिखी, टीवी के कुछ और प्रोग्राम्स लिखे, टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट्स लिखे। तो दो चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा था। कम्युनिकेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैं अपना करियर बना सकता हूँ, बिकॉज ये दो चीज़ें मेरे पास में हैं। उसी चीज़ को लेके मैंने जब अपना ग्रेजुएशन किया तो मैंने कहा कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर दोनों में ग्रेजुएशन किया। कम्युनिकेटर की एक असेंशियल चीज़ होती है उसका इवेल्युएशन, वो कैसे चीज़ों को समझता है, क्योंकि वो हर सब्जेक्ट पे लिखेगा।
बिल्कुल।
तो एमए इकोनॉमिक्स करने का मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं एक एनालिसिस सीखूं, डेटा कलेक्शन, डेटा का कोलेशन, उसका इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हो।
बिल्कुल।
फिर मैनेजमेंट की एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, और फिर एक प्रोग्राम किया मैन पावर रिसर्च मेथोडोलॉजी में।
तो कम्युनिकेशन के फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सर?
तो कम्युनिकेशन के फील्ड में पहली बात तो समझाना पड़ता है कि आप किस फील्ड में हो। मेरी जब शादी हो रही थी तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझसे पूछा काम क्या करते हो। तो मैंने बोला जी मैं कम्युनिकेशन की लाइन में हूँ। तो उन्होंने बोला वो क्या होता है? तो मैंने कहा लोगों से बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। उन्होंने कहा तो मैं भी करता हूँ। तो मैं भी,
तो इसमें स्पेशल क्या है?
तुम अलग से कैसे हो?
okay.
वो इस दुनिया में नहीं है, बट मैं आखिर तक उनको एक्चुअली मैं समझा नहीं पाया कि मैं करता क्या हूँ।
ओके।
तो जब वो मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ते थे, ऑथर्ड आर्टिकल्स पढ़ते थे, तब उनको बहुत खुशी होती थी। लेकिन एक सवाल का जवाब कि एक्चुअली में प्रोफेशन है क्या, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा बैकबोन होता है।
बिल्कुल।
मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में यही फर्क है कि मार्केटिंग एक एडवर्टाइजिंग है, प्रोजेक्शन है। कम्युनिकेशन एक बहुत ऑथेंटिक है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है वो एक कॉर्पोरेट की आप कह दीजिए लैंग्वेज होती है, एक कॉर्पोरेट का प्रोजेक्शन एक अलग लेवल पे होता है, एक ऑथेंटिसिटी अलग
से कम्युनिकेट कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो सामने वाले को, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है,
बहुत जरूरी है। उसको विश्वास होना चाहिए कि जो एक कम्युनिकेटर कह रहा है
बिल्कुल
वही सही है। हम मैनेजमेंट की आवाज होते हैं ये।
तो आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में कम्युनिकेशन फील्ड में काम किया है सर, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चैलेंजेस है दोनों में?
देखिए गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ा इवेंट प्लेयर है। जितनी जल्दी जितनी कुशलता से गवर्नमेंट किसी इवेंट को कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर अभी उस तरह से नहीं कर सकता।
रीजन?
गवर्नमेंट का फंक्शनिंग, गवर्नमेंट का विजन बहुत अलग होता है। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज, गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। मैंने इतना टाइम बिताया गवर्नमेंट के अंदर में, मैं 50 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस की कैंपेन में शामिल रहा हूँ, पल्स पोलियो की कैंपेन में शामिल रहा हूँ, एड्स अवेयरनेस की कैंपेन में शामिल रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी कैंपेन है, वेमेन एम्पावरमेंट है, गर्ल चाइल्ड है, रूरल डेवलपमेंट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का तो आई वॉज अ सेंट्रल पॉइंट कि डीएवीपी में एक सेल था, कोऑर्डिनेशन सेल, उसका मैं डिपार्टमेंट हेड था। और पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की रिपोर्ट कहाँ कहाँ क्या क्या पब्लिसिटी हुई है वो हम वीकली भेजते थे, जो एक टाइम में पीएमओ के पास तक जाती थी। तो गवर्नमेंट की जो ये मैं आपको बता रहा हूँ 93-94, इतना स्ट्रॉन्ग आप कह लीजिए कि एक एसोसिएशन है गवर्नमेंट के अंदर में, जिसका लेवल बहुत अलग है। और ये आज से नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर अगर आप देखें और आज देखें, दोनों में आपको कुछ फर्क दिखेगा। लेकिन गवर्नमेंट आज भी जितनी क्विकली इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, प्रोफिशिएंसी से करती है, पॉसिबल अलग, बिल्कुल अलग चीज है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर में फोकस अलग है, गवर्नमेंट का फोकस अलग है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आप कुछ भी काम करते हो, उसके अंदर में कॉर्पोरेट का अपना एक मोटिव और एक इंटेंशन होता है।
बिल्कुल।
गवर्नमेंट जब काम करती है तो गवर्नमेंट के अंदर में सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल होता है।
बिल्कुल सर।
तो वहां स्ट्रेटजीज और थॉट प्रोसेस अलग बनते हैं, उसकी वास्टनेस पूरी कंट्री होती है, ग्लोबल इमेज होती है। प्राइवेट सेक्टर का नॉर्मली उस एरिया में होता है जिस एरिया के अंदर में इनका या तो बिजनेस ऑपरेशन हो रहा होता है या वो काम कर रहे होते हैं, दोनों में मेजर मेजर ये फर्क आ जाता है।
फर्क आ जाता है। तो सर आपने गांव के क्षेत्र में भी काम किया है, ठीक है, शायद 88-89 की में मैं बात, तो क्या उस टाइम में चैलेंजेस आते थे, गांव के लोगों को समझाना कितना डिफिकल्ट होता होगा उस टाइम में?
88-89 में आई वॉज वर्किंग एज एग्जीबिशन ऑफिसर इन कपाट। तो कपाट के अंदर में हमें एक एग्जीबिशन लगानी थी गौरीगंज में, और गौरीगंज में राजीव गांधी जी वहाँ पे सोनिया गांधी जी के साथ में उसको इनॉग्रेट करने आने वाले थे। और मेरे को वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना था पावल डोम, और वो पावल डोम करीबन करीबन मानिए 10,000 नट बोल्ट्स को कसकर उनकी प्लेट्स को मिलाकर जोड़कर एक गुंबद नुमा शेप बनानी थी जिसमें खिड़की दरवाजे सब हों, और उसके ऊपर में पैराग्रास एक खास घास होती है जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है, वो बनाना था और मेरे को फेवर था, परंतु चैलेंज था करना था, और वो हमने किया। उसमें जब राजीव गांधी जी आए तो उन्होंने बोला कि उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने अंदर पूरा घूम के देखा, उन्होंने कहा कि ये चीजें आप, ये ऐसा चीज स्ट्रक्चर आप कहीं और भी बनाओ। और गांव वालों को समझाना या गांव वालों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताना, आज टेक्नोलॉजी है, आप कई मीडियम से और माध्यम से बना लेते हैं, आज हर चीज उनके बैंक अकाउंट में जाती है, पर उस टाइम में एक आपका अपना फेथ उनके ऊपर में बैठाना
बहुत बड़ी बात,
बहुत मुश्किल होता था। पहली बात उनका एक फेथ ना होना, उस वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर उसको न्यूट्रलाइज करके उस फेथ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, वो हमारे लिए अलग चैलेंज होता था। फिर उसे रूरल की एक सस्ती अच्छी और टिकाऊ टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, वो बहुत जरूरी था। आज हम यूट्यूब पे देखते हैं, एक चैनल में मैं देख रहा था पीछे मूंगफली छिलने की मशीन वो दिखा रहे हैं कि बिना बिजली के चलती है, ये मशीन हम 88 में बना के गांव वालों को दिखा चुके हैं।
ओके, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं सर डिटेल में।
आपके गांव के अंदर में कपाट, मैं आपको बताता हूँ, कपाट दो एसोसिएशन से बना था, एक काट और एक पैडी, एक पीपल डेवलपमेंट एक टेक्नोलॉजी, दोनों को मिला के कपाट बना। तो गांव के लोगों का डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलपमेंट, उनको सपोर्ट, ये कपाट का इंटेंशन और मोटिव था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता था। उसी कपाट के अंदर में ऐसी सैकड़ों एनजीओ थी जो रूरल प्रोडक्ट तैयार करती थी गांव वालों की मदद के लिए, उसी में एक ये मशीन थी ग्राउंडनट शेडर, उसमें आप मूंगफली डाल दीजिए और उसमें कांटे होते थे, उसको आप सिर्फ घुमाइए तो वो सारे छिलके अलग कर देती थी और मूंगफली जो है वो अलग हो जाती थी। तो हम बोरे के बोरे मूंगफली भर के ले जाते थे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये आपका एक रोजगार का बहुत अच्छा साधन बन सकता है, अब मूंगफली लाओ छीलो इसको वो करो और आप फिर इसको छील के बेचो। ऐसी एक मशीन थी वहां पे हाइड्रोपंप, आज हम देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सा चैनल दिखाते हैं, पर अगेन मैं बोलूंगा वो टेक्नोलॉजी हम 88 के अंदर में गांव में जाके हम दिखा चुके हैं। उस वो पानी से हाइड्रोपंप जो है पानी से चलता है, पानी के प्रेशर से वो थ्रस्ट बनाता है। मुझे याद है जिस पंप को मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था वो 60 फीट ऊंचा पानी फेंक देता है। तो उसका पर्पज ये था कि जो लोग थोड़े से ऊंचे इलाके में रहते हैं और नीचे पानी है, उनको ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है, उनके लिए वो पंप जो है वो बहुत फायदेमंद था। फिर कुएं से पानी निकालने के लिए पुली होती है, पुली में भी आप ऐसी पुली डिजाइन कर रहे हो जिसमें एनर्जी कम लगे, इजीली रोलेबल हो ताकि आदमी उसमें कोई भी जो डाले पानी निकालने में उसको परेशानी नहीं हो। ऐसी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जो है वो गांव के फेयर्स में 88 में भी हम इंट्रोड्यूस करते थे, उनको सिखाते थे और चलाना भी सिखाते थे, और कभी कभी उनको डोनेट करके भी आते थे।
तो कन्विंस करना काफी डिफिकल्ट था उन्हें,
लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर था,
बिल्कुल
कि लैंग्वेज को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मेरा अपना मानना है कि जो जिसको समझना है ना वो एक साइन लैंग्वेज से भी समझ लेता है, और अगर आप कोई मशीन समझा रहे हो तो मशीन जैसे ऑपरेट कर रही है तो वो उसको भी बड़ी आसानी से समझ।
बिल्कुल, आजकल मतलब जो क्वालिफिकेशन है उसमें रोड मैप का क्या रोल है, कितना जरूरी है अपने करियर को अच्छे से बिल्ड करने के लिए?
मैं एक अब मेरी बड़ी अच्छी सी कहावत है, मैं हमेशा बोलता हूँ
जी जी,
एवरीबॉडी वांट्स टू हैव द ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग द एग। हर इंसान को सक्सेस चाहिए लेकिन बिना मेहनत करे। लोग अचीव करना चाहते हैं कि भाई मैं किसी कंपनी का सीईओ बनूं या मैं एक अलग ओहदे पे पहुंचूं, पर उसका जो रोड मैप है वो आप कैसे पहुंच सकते हो, आपको अपनी क्वालिफिकेशन कहां से कहां तक लेके जानी है, कैसे लेके जानी है, वो नहीं बनाते हैं। और आपकी सक्सेस वहीं से डिरेल होती है, बिकॉज एक टाइम पे आप स्टार्ट अच्छा करते हो लेकिन बीच में आपको डाइवर्जन मिल जाते हैं, तो आपका फोकस हट जाता है, आप बीच में जाके आप 10 जगह बढ़ जाते हो। अब इसको अगर आप समझें कि एक नदी है और नदी एक जगह जाके बीच में वो बहुत सारे सब रिवर्स में बढ़ जाए तो नदी की जो एनर्जी है वो भी खत्म हो जाती है। ये समझाना आज के यूथ को बहुत जरूरी है
कि अपने गोल पे फोकस रखो,
बहुत जरूरी है। आपका जहां आपको जाना है आपको पता होना चाहिए आपको कैसे जाना है। और ऐसा भी कोई रोल मत बनाओ, ऐसे भी कोई आप प्रोफेशन मत लो जो आपके लायक ही नहीं हो या आप जिसको आप कर नहीं सकते हो। कोई एग्जांपल देता हूँ, मेरा बड़ा शौक था मैं फाइटर पायलट बनूं। और लगता था फाइटर पायलट ऐसे हवाई जहाज जाता तो बड़ा एक्साइटिंग लगता था, लेकिन एक वक्त में मैंने देखा कि मुझे हाइट से डर लगता है। मैं नीचे 10वीं 11वीं मंजिल से मैं नीचे ऐसे करके देखने मुझे घबराहट होती है। तो मेरे पास दो चॉइस था, या तो मैं फाइटर पायलट के लिए मैं अपने उस फियर को ओवरकम कर लूं, या मैं फाइटर पायलट का सपना छोड़ दूं। अब मैं सोचूं कि मैं फियर भी कम नहीं कर सकता और मैं फिर भी फाइटर पायलट के लिए तैयारी करूं, तो मेरे ऐसा मूर्ख इंसान कोई नहीं।
एग्जैक्टली राइट।
तो मैंने एक टाइम पे रियलाइज किया, अपने आप को मौका दिया कि मैं फियर को ओवरकम नहीं कर सकता, तो मेरे को ये सपना छोड़ के किसी और सपने के ऊपर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसको मैं अचीव भी कर सकूं, अपनी मेहनत से अचीव कर सकूं।
बिल्कुल।
ये आज के टाइम में अपने बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि आपको जिस प्रोफेशन में जाना है उसकी तैयारी आप ग्रेजुएशन से मत करो, 11वीं 12वीं से करो।
मेरा किस फील्ड में सक्षम है आप उस चीज को भी आप देखो,
आप बहुत जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर की क्वालिटीज क्या हैं, आप मेंटरशिप लेते हो, लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मेरी डॉटर है, मैं उसको उसका कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे जैसे हैं, बहुत अलग हैं, तो मुझे उसका प्रोफेशन, वो प्रोफेशन चुनने में आई एम वेरी सपोर्टिव। आज उस प्रोफेशन में वो शी इज एक्सेलिंग अ लॉट। तो ऐसे ही मेरा बेटा है, मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा अलग है, ही इज मोर ऑफ इनटू एनालिसिस डेटाज बिजनेस, तो वो कम्युनिकेशन की लाइन का नहीं है। अगर मैं उसको प्रेशराइज करूं कि यू हैव टू बिकम अ कम्युनिकेटर, ही विल नॉट बी अ सक्सेसफुल कम्युनिकेटर। लेकिन जिस लाइन में वो जा रहा है या जिस लाइन में उसको जाना है, ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर दैट लाइन।
बिल्कुल।
ये हर एक के लिए है, हम तो अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं लेकिन हर एक के बच्चे के लिए माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए। मैंने जो मेरा एक कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट था, मैं हमेशा स्कूलों में जाके, मैंने बहुत स्कूलों में लेक्चर दिया, मैं इनको ये बोलता था कि हमेशा, और आज भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, कि आप एक बच्चे का कैरियर 12th के बाद में डिसाइड करते हो कि उसको साइंस चाहिए 11th में, साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए या कुछ चाहिए, पर आपने उसको 10th में ऐसा क्या बताया है कि वो साइंस कॉमर्स को लेके अपना कैरियर बना ले? ना आप उसका ओरिएंटेशन करते हो, ना आप किसी बाहर की फैकल्टी को या बाहर के किसी अच्छे प्रोफेशनल को बुला के बताते हो कि मैंने कॉमर्स से मैं यहां पहुंचा हूं, या मैंने आर्ट्स लिया तो मैं आज मेरे पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगे, या मैं साइंस ले रहा हूं तो मैं यहां जा सकता हूं।
आज भी बहुत लोग कोर्स का सिलेक्शन इसके अकॉर्डिंग करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स लूंगा। आज भी बहुत लोग ऐसे सिलेक्शन करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका प्रेशर और एक फ्रेंड्स का सर्कल, और कभी कभी तो ये देखते हैं कि मामा भी बोलते थे अरे यहां से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पे कॉलेज है उसी में एडमिशन ले ले, ग्रेजुएशन ही तो करना है।
और हर किसी का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, हर किसी की क्वालिटीज अलग होती है।
बिल्कुल।
और उसके अकॉर्डिंग नहीं जाके बस फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है, साइंस ले रहा है, या पेरेंट्स ये कह रहे हैं, तो उसके हिसाब से लोग अपनी करियर को खराब कर ले रहे हैं।
कंप्लीटली एग्री। बिल्कुल बिल्कुल यही चलता है।
और बहुत लोगों के हमें डीएम भी आते हैं कि पढ़ाई क्यों करना, इतना मेहनत क्यों करना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग गलत हरकतें करके भी करोड़ों कमा रहे हैं, कोई चाय बेच के भी फेमस हो जा रहा, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगे?
देखिए, जो लोग वीडियोस बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, एजुकेटिव होते हैं, और उसमें हर एक में एक मॉरल वैल्यू, एक सीख होती है।
बिल्कुल।
वो भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का। चाहे उन्होंने कितनी पढ़ाई की हो नहीं की हो, या कई तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी हैं जिन्होंने इसको ये फील्ड बाय चॉइस लिया है। कुछ माँ बाप के सपने होते हैं कि वो इस फील्ड में ना जाए, बच्चे भी नहीं जाना चाहते। आपको चॉइस करनी है, यू वॉन्ट टू डू जॉब ओनली फॉर मनी और यू वॉन्ट टू डू जॉब फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस सोसाइटी, और अपना एक इंडिपेंडेंट एक प्रोफेशनल लाइफ आगे आपको बनानी है। दोनों में डिग्निटी है, ऐसा नहीं है, बट दोनों की डिग्निटी में फर्क है।
आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है सर?
देखो, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू मानोगे तो मैं आपको बहुत क्लियर एग्जांपल से बोलता हूँ। एक टाइम में शायद दूरदर्शन के ऊपर में कई कोई टीवी सीरियल बनता था, तो उसमें हमारा नाम, हमारी फैमिली का नाम बहुत आता था। और काफी ऐसे एक्टर हैं आज बॉलीवुड में भी हैं और टीवी सीरियल में भी हैं जिनके साथ में, जो हमारे साथ में काम कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इरफान खान जो बॉलीवुड के एक्टर थे। पर आपकी चॉइस है कि आपको उस लाइन में आगे जाना है या आपको एक अलग प्रोफेशनल कैरियर आपको डेवलप करना है। मेरी पर्सनल चॉइस में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपना एक प्रोफेशनल कैरियर एक सर्विस या प्रोफेशनल के जैसे मुझे डेवलप करना है, मुझे उस लाइन में नहीं जाना। पर बहुत लोग हैं जाते हैं, OTT के आने के बाद तो बहुत लोग यहाँ उनको जॉब भी मिल गया है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है। पर उस टाइम पे ना OTT था, ना इतने टीवी चैनल्स थे,
सोशल मीडिया नहीं था, लिमिटेशंस काफी कम थे।
लिमिटेशन और आपकी सोच में फर्क था, आप जिस चीज को आप देख नहीं रहे हो। स्टार ट्रैक के अंदर में, मोबाइल के अंदर में एक वीडियो देखते थे और वो नीचे कहीं भी उतरता था वहां सिग्नल आते थे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 2-3 शताब्दी के बाद या 25-20 साल के बाद में हमारे हाथ में भी वो मोबाइल होगा जिसमें हम एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात कर रहे
हैं। कॉमन हो जाएगी।
तो किसी ने विजन देखा होगा, लेकिन मेरा अपना कैरियर, मेरा अपना सोचना ये है कि जो चीज आप कई बार देखते हो और आपको अच्छी लगती है, शायद उस प्रोफेशन में आप जाना नहीं चाहोगे।
तो आप अभिनय की दुनिया में भी रहे हैं सर।
हाँ,
तो उसके कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताइए।
आपको एक प्ले बताता हूँ। एक प्ले था कुंवर साहब। और उसमें जहीर साहब है, आजकल जो काफी टीवी सीरियल्स में भी आते हैं, बॉलीवुड में भी आते हैं। उसमें एक सीन था, कुंवर साहब था, कि एक बड़े लड़के को बेनिफिट मिलता है और बाकी बच्चों को नहीं मिलता। तो उसमें एक कलाकार थे, उनकी वाइफ जो है आजकल बहुत फेमस है बॉलीवुड में, बहुत फिल्मों में आती है, और जहीर साहब तो कह रहे ही हैं। तो उसमें एक सीरियल, एक एपिसोड था कि जहाँ पे वो एक बच्चा चोरी करता है, सबसे छोटा बच्चा, और उसको बचाने के चक्कर में फादर उसको पीटता है, और उसको बचाने के चक्कर में जो बीच वाला बच्चा, जो मैं था, वो बीच में आ जाता है। तो जब वो बीच में आता है तो कई बार आपका बहाव में आप बह जाते हो। तो उस समय जो उसकी मैथ की पिटाई हो रही थी, अच्छी खासी मैथ मेरे पीछे भी लगी, और वो इमोशंस ऐसे थे कि वो बैंत एक के बाद 2-3-4 बैंत जो बच्चे को लगनी थी, वो जो आर्टिस्ट थे वो इतने खो गए उसमें कि वो 2-4 बैंत अच्छी खासी मेरी पीठ पे भी लगी। और एक हम कर रहे थे प्ले चोर साहब।
क्या एज था सर उस टाइम आपका?
उस टाइम पे कितना एज रहा होगा, 15-16 साल का। हाँ, उन्होंने सच में अच्छी खासी पिटाई करी। बाद में सॉरी वॉरी होता है, वो तो खैर होता ही, हम भी समझते थे। और एक प्ले हम कर रहे थे चोर साहब, और चोर साहब में जंतर मंतर के अगर आप देखें तो एक घड़ी है, तो उसके ऊपर में घड़ी में मुझे भागना था। वो भागते भागते पैर स्लिप हो गया और पूरा एक पैर के ऊपर में पूरा ब्लड 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 हो गया। पर उसका अपना एक मजा है उस टाइम का। तो एक टाइम पे आप वो सब करते हैं, पर हाँ, आपके दिमाग में होता है कि बट दिस इज ओनली अ टेम्पररी फेज, टुमारो यू हैव टू मूव आउट ऑफ दिस एंड यू हैव टू लिव अ लाइफ और यू हैव टू डेवलप अ प्रोफेशन व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्लैमर। और मैं मानता हूँ ग्लैमर की लाइफ बहुत लिमिटेड है, जैसे फैशन के अंदर में बोलते हैं, इट्स अ वेरी लिमिटेड लाइफ। आपका एज फैक्टर बहुत आ जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत अलग है। तो एक टाइम पे आप बहुत कुछ करते हो, लेकिन एक टाइम के बाद आके,
तो सर बहुत कम लोगों को ही पता है कि आप एज अ पपेट्रियर भी काम कर रहे थे एंड आपकी एक फिल्म को निपोन अवार्ड भी मिला है, तो उसके बारे में कुछ बताएं।
पहले तो ये बताइए, आपको पता कैसे लगा कि मैं पपेटियर का काम करता हूँ?
मैंने बहुत आपके बारे में R&D किया है सर।
हुआ ये कि NCERT के अंदर में एक CIT डिवीजन होता था, तो वहाँ पे उसकी जो डायरेक्टर थी वो जयचंदी राम करके थी। तो एक दिन उन्होंने मेरे को दो ग्लव पपेट दिया कि ये दो ग्लव पपेट है और इसको तुम ऑपरेट करो। तो अब जो आपका एक पहले सवाल था, जब आप एक्टिंग की फील्ड में हो तो आप वॉइस मॉड्यूलेशन भी आप सीख जाते हो। तो मैंने उसमें उनको उस चीज़ को ट्राई किया, ट्राई किया तो वो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि अब तुम मेरे साथ में तुम पपेट्स को यहाँ पे एज पार्ट ऑफ एजुकेशन यूज करोगे, जो गांव में हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं। आई वाज वेरी एक्साइटेड। आपको ये बता दूं कि NCERT और CIT लोग बहुत कम जानते हैं, गांव के बच्चों के लिए ये जो प्रोग्राम बनाते हैं वो हार्ड कोर एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, और मॉरल वैल्यू से लेकर उन बच्चों को सीख देने के लिए पढ़ाई लिखाई हेल्थ सबके ऊपर में NCERT और CIT बहुत अच्छा काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब ये सीखा तो दूरदर्शन में एक प्रोड्यूसर थी अविनाश यशपाल, उन्होंने मेरे को एक दिन बुलाया और उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ तुम पपेट बेस्ड एक प्रोग्राम स्टार्ट करो। तो हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम नटखट दुनिया दूरदर्शन के ऊपर में, और वो प्रोग्राम रिकॉर्ड भी होता था और कई बार लाइव भी होता था। उसमें मैंने दो पपेट बनाए, मैंने खुद ही पपेट बनाए, एक बनाया चुनमुन, चुनमुन एक चिंपांजी था, एक बनाया मुनमुन जो एक बच्चा था। तो मैं दोनों पपेट्स को दो हाथ में लेके, और एक स्टैंड बनता था, उस स्टैंड पे अपनी कोहनी को टिकाता था, और दो आवाजों में उनका कन्वर्सेशन से एज ए कंपेयर,
आवाज आपकी होती थी,
दोनों आवाज मेरी होती थी, तो उन दोनों आवाजों से उनकी इंट्रैक्शन कराता था।
एक छोटा सा डेमो
सर। अभी वो पपेट हाथ में नहीं है। तो उसका जो मुनमुन था, जो बच्चा था, उसका एक जो धागा था मुंह खोलने वाला, उसको मैं एक पैर के अंगूठे से लगाता था ताकि वो हिल के उसकी वो हिल सके, और उनकी मैं छोटी छोटी ड्रेस बनाता था और उनको ड्रेस पहना के। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब बच्चे उनमें स्कूलों के बच्चे आके पार्टिसिपेट करते थे उस प्रोग्राम में, तो ये कंपेयर वहाँ पे सिर्फ ये दो पपेट्स ही करते थे। 45 एपिसोड का मैंने वो सीरियल किया था, और कभी कभी बच्चे जो हैं वो अपने एक्शन भूल जाते थे, स्कूल के बच्चे आते थे तो उनकी टीचर भी काफ़ी नाराज होती थी कि कम से कम जब बच्चे परफॉर्म कर रहे हो तो पपेट्स जो हैं वो उनको आप नीचे कर लिया करो, बच्चों को मेरा ध्यान बिगड़ जाता है। बट हमने पपेट्री के माध्यम से एक बहुत ही अलग किस्म का एक प्रोग्राम बनाया था, और पपेट का सेट डिजाइनिंग भी बहुत अलग होता है, उसमें आपको बीच में गैप्स देने पड़ते हैं। तो मैंने पपेट ना सिर्फ दूरदर्शन के लिए बहुत काम किया, बल्कि मैंने NCERT के लिए भी उसका बहुत काम किया NCERT का। हमने एक फिल्म बनाई थी एयर अराउंड अस, उसका था
अवार्ड मिला था।
हाँ, वो उसका बेसिक पर्पज था हवा हमारे चारों ओर है, पर हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो उस फिल्म को जापान के अंदर में निप्पन अवार्ड मिला, जहां तक मेरी जानकारी है वो पहला एजुकेशन में के साइड में किसी शॉर्ट फिल्म को पहली बार इंडिया को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, जिसका जो पार्लियामेंट में भी जिसके बारे में बताया गया था। तो ये कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो आपको बड़ी खुशी देती है कि आपने एक टाइम में,
पास नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स दोनों हैं।
बिल्कुल मेरे पास हैं।
सर अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो उसमें भी आपने काफी योगदान दिया है, तो प्राइवेट सेक्टर्स में किन किन कंपनीज के साथ आपने काम किया?
देखिए, मैंने निफ्ट जब छोड़ा तो मेरा पहला जॉब था वेदांता ग्रुप, और मैं वाज पोजीशन्ड इन हिंदुस्तान जिंक इन उदयपुर। मैं हिंदुस्तान जिंक का भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का हेड था, और उस टाइम पे वेदांता ग्रुप का भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का हेड था। तो ये मानिए कि PR डिपार्टमेंट से कॉपकॉम डिपार्टमेंट वेदांता उसी टाइम पे बना, और उसके बाद में मैंने कुछ टाइम में फिमी में काम किया, फिमी इज़ ए फेडरेशन। फिर मैं DS ग्रुप में आया, DS ग्रुप धर्मपाल सत्यपाल, बहुत फेमस कंपनी है, बहुत अच्छा कल्चर है। वहाँ से फिर मैं M3M में आया, M3M से अब मैं यहाँ पे ऑफ बिजनेस कंपनी में एज वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर।
तो माइनिंग और मेटल्स का जो काम होता है सर, काफी ही डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग होता है, तो ऐसे सेक्टर्स में कम्युनिकेट करना कितना डिफिकल्ट होता था?
देखिए, माइनिंग मेटल सेक्टर में ना तीन तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। एक होते हैं जो वर्कमैन होते हैं या शॉप फ्लोर्स पे, या जो आपके माइंस के अंदर में जो लोग जाते हैं, सैकड़ों लोग माइंस के अंदर जाते हैं, अंडरग्राउंड माइन होती है या ओपन कास्ट है, कोई भी है। एक होते हैं मिडल मैनेजमेंट, जैसे इंजीनियर्स है या और भी लोग हैं जो एक एक उन चीजों को मैनेज करते हैं सेंट्रा बीच के, और एक आप अपना टॉप मैनेजमेंट मान लीजिए। तो जो आप टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहते हो वो आप वर्कमैन से कर नहीं सकते, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट तक सबके पास में कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं। लेकिन जो मेजर स्ट्रेंथ है, जो मेजर एम्प्लॉयज हैं, वो आपके माइन एरियाज में या शॉप फ्लोर पे होते हैं, जिनका समय लैपटॉप पे नहीं बीतता। तो आपके पास में दो सोर्स हैं। एक वो है जो आप कहते हो कि हम डिजिटल कैंपेन चला लेंगे, तो आप इंटरनल कम्युनिकेशन चलाते किसके लिए हो? आप इंटरनल कम्युनिकेशन का दो पर्पस होते हैं, एक कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को एम्प्लॉयज में फ्लो करना, दूसरा एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। तो अगर आप कोई चीज प्रिंट में लेके नहीं आ रहे हो, हार्ड कॉपी में लेके नहीं आ रहे हो, तो फिर आप उसको आप वर्कमैन तक नहीं पहुंचा पाओगे। और आपका जो फर्स्ट लेयर है वो तो ऑलरेडी सब कुछ जानते ही है, बिकॉज आप उन्हीं के एसोसिएशन से आप अपना हाउस जनरल निकालते हो। हमने ये तय किया था उस टाइम पे कि हम हर चीज का प्रिंट वर्जन निकालेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि जो लोगों के हाथ में सीधा पहुंचे। एक कम्युनिकेशन का हमारा एक वो तरीका है। उसी के अंदर में हमारी जितनी भी स्टोरीज आती हैं या मीडिया में जो भी हम कवर करते हैं, वो सब भी हम उसी के अंदर में एज ए प्रिंट करके तक पहुंचाते थे। उनके जो भी अच्छे काम करते थे, उनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व करना, वो सब हम एक कम्युनिकेशन प्लान के थ्रू उसमें डालते थे। दूसरा आपके आ जाते हैं स्टेक होल्डर्स, जिसको मैं बोलता हूँ। गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स की स्ट्रेटेजी बहुत अलग होती है। आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं नहीं है? हिंदुस्तान जिंक के तो 29% शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो वैसे भी बताना बनता है। लेकिन आप अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं और आपके पास में 100% इक्विटी, आपकी अपनी कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर, जो गवर्नमेंट से आपका एसोसिएशन रहता है, या आपके ओपिनियन मेकर्स हैं जो उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं, या वो यूनिवर्सिटीज हैं जो वो सब्जेक्ट के ऊपर में पढ़ाती है या करती है, उन तक आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो ये कोई नहीं करता। बहुत कम कंपनीज हैं जो करती है। मेरा फोकस हमेशा ये रहा है कि अगर आप माइनिंग में, जैसे मैं कहता हूं, माइनिंग मेटल में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, या आपने सस्टेनेबिलिटी पे अच्छा काम किया, या सीएसआर पे आपने अच्छा काम किया है, तो गवर्नमेंट को बताओ, क्योंकि अल्टीमेटली आप उन्हीं के ऑब्जेक्टिव ड्राइव कर रहे हो। उनको बताना चाहिए। और आप जिस जगह पे, जिस एरिया में आपका, आपकी फैक्ट्री है या जिस एरिया में आपका बिजनेस है, उसके आसपास के एरियाज को डेवलप करना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। पर हर स्टेट के गांव वालों का समझने का लेवल, उनके अंडरस्टैंडिंग, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग है। अब अगर आप चेन्नई में, अगर आपका कोई फैक्ट्री है, तो उनकी प्रॉब्लम्स, इश्यूज आपके उनके अलग हैं। राजस्थान में इश्यूज अलग हैं, पंजाब में इश्यूज अलग हैं। आपके सीएसआर का स्ट्रक्चर उन इश्यूज को देख कर बनना चाहिए, ना सिर्फ ये कि मेरे को क्या पसंद है। हम क्या चेक काट के किसी एनजीओ को एंगेज कर रहे हैं जो आपकी तरफ से काम कर रही है, कोई बुराई नहीं है।
तो अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग आप लोग प्लान करते थे चीजें?
हर कल्चर, लैंग्वेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से आप सीएसआर प्रोजेक्ट आप बनाते हो, और कम्युनिकेट भी फिर आप वैसे ही करते हो। हिंदुस्तान जिंक में मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, खुशी। खुशी का बड़ा क्लियर मोटिव था कि एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन। हमारे वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स थे और वेदांता ग्रुप के अपने बहुत सारे चाइल्ड केयर सेंटर्स थे, हमने उसको पहले कन्वर्ट किया। उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था कि आपके घर में जितने लोग हैं, आपके जो काम करते हैं, आपके बर्तन करने आती है, या आपके ड्राइवर है, या आपके और भी हेल्पर्स हैं, आप उनके बच्चों से पूछो कि उनका एजुकेशन कैसा चल रहा है, उनके से पूछो उनकी हेल्थ में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, उनका न्यूट्रिशन लेवल कितना है, क्या वो बच्चा स्टंटेड ग्रोथ के थ्रू प्रोसेस कर रहा है या पास कर रहा है, या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर आप उन बच्चों की ही आप देखभाल कर लो, इसमें पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, मोटिव इज इम्पोर्टेंट. तो आप बहुत बड़ा देश का भला करते हो. हमने इस कैंपेन को ऐसे लॉन्च किया
था, बेसिकली बच्चों के डेवलपमेंट के लिए है,
बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन. बाद में राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने तकरीबन 3,000 राजस्थान में खुशी सेंटर्स बनाया.
3,000
और उसको एक बहुत ही इंटीग्रेटेड मॉडल में डाल के उसका डेवलपमेंट किया. फिर बाद में वो सेंटर, खुशी के सेंटर वेदांता की जहां जहां पे कंपनीज थी वहां पर भी बनने शुरू हो गए. अब उसके पीछे अगर आप कहानी पूछेंगे, उसके पीछे कहानी ये है कि मैंने खुद बैठ के किदवाई नगर के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में जमीन में बैठ के मैंने मिड डे मील ली है. मैंने मिड डे मील खाई है. तो आपको लगता है कि कभी ना कभी जिस दौर से आप गुजरे हो, आपकी पोजीशन के हिसाब से या आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ के हिसाब से
आपको
शायद आप कुछ चेंजेस ला सकते हो, तो आपको लाने चाहिए. फिर एक प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया था, उसका मैं फाउंडर हूँ, सखी. सखी का प्योर मोटिव था इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, रूरल एंड ट्राइबल वुमेन. वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. मैं सोशल एम्पावरमेंट के ऊपर में काम नहीं कर रहा था. उसकी नींव भी जब मैं 1988 में हाँ, जब मैं कपाट के एग्जीबिशन भोपाल में लगाने गया था, वो पहली एग्जीबिशन थी रूरल फेयर, जिसको कपाट मेला ग्राम श्री हमने नाम दिया था. उसमें 150 स्टॉल थी कम से कम, और उन्हीं में ट्राइबल्स की बहुत स्टॉल थी. तो वहां पे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे उन लेडीज को या उनके बच्चों को उस टाइम पे शायद दूध वगैरह का कुछ इशू वहां पे हुआ. और मुझे ऐसा लगा कि जैसे
अरेंजमेंट उनके इनका,
हाँ अरेंजमेंट कुछ अरेंजमेंट का प्रॉब्लम था. मुझे ऐसा लगा कि शायद एक तबका ऐसा है जिसपे हमें, जिनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे हमें ध्यान देना चाहिए,
करना चाहिए. राइट.
मैंने उस मोटिव से सखी को मैंने फॉर्मुलेट किया. हमारे जितने भी हिंदुस्तान सिंह के जितने हमारे
सखी कंपेन है, इसके लिए
सखी इज अ वेरी डिफरेंट मॉडल. जो अब तो राजस्थान का तो बहुत फेमस मॉडल है, बल्कि बाकी स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है. सखी का मॉडल बड़ा क्लियर था कि आप, मैंने करीबन 7 दिन में 8-9 हज़ार किलोमीटर ट्रेवल किया, 7-8 दिन में, हाँ तकरीबन 15 दिन में मैंने 8-9 हज़ार करीबन किलोमीटर ट्रेवल किया. और वहाँ पे बहुत लेडीज से मिला, गांव की औरतों से मिला, और उनका उनके साथ में एक वर्कशॉप किया. और वर्कशॉप करके आइडेंटिफाई किया कि वो लोग जूट के काम में करना चाहती हैं, या स्पाइसेस में करना चाहती हैं, या कैंडल मेकिंग चाहती हैं, यूनिफॉर्म डिजाइन करना चाहती हैं, करना क्या चाहते हैं. उस हिसाब से मैंने उनके क्लस्टर,
कैपेबिलिटी उनके क्या कर सकते
हैं, उसके हिसाब से मैंने उनके क्लस्टर बनाए. क्लस्टर बनाने के बाद में मैंने उसको एक बिजनेस से लिंक कर दिया. जैसे हर बिजनेस के अंदर में कैंटीन्स होती हैं, कैफेटेरियाज होते हैं, और माइनिंग में तो बहुत सारे होते हैं,
वो तक पहुंच पाए,
माइनिंग में तो बहुत होते हैं. तो हमने एक क्लस्टर बनाया स्पाइसेस का. तो हमने सखी स्पाइसेस बनाए, हल्दी, धनिया, मिर्च,
ठीक है,
उनकी ग्राइंडिंग मशीन्स लगवाई, बहुत सस्ती मशीन्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसके ऊपर में लेबल लगाया, और हमने उसको एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में 100% प्योरिटी के साथ में ना सिर्फ अपनी प्रेमिसेस में सप्लाई करना शुरू किया, बट लोगों को देना शुरू किया. सीएसआर के अंदर में आप कुछ कमा नहीं सकते हो, आप सिर्फ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो जो प्रॉफिट होता है वो 100% लेडीज का होता है. तो आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट शुरू हो गया.
बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा मतलब बताया कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल आपने नहीं किया, क्योंकि लोगों की आप हेल्प कर दोगे तो वो कितने दिन से खा पाएंगे. लेकिन ये अगर आप उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, स्टेबल कर रहे हो, तो उनके लाइफ लॉन्ग के लिए ये काम आएगा,
बहुत जरूरी हो जाता है. जैसे हमने एक क्लस्टर बनाया हमारा होम फर्निशिंग, जिसमें हमने डबल बेडशीट पैच वर्क में और कुशन कवर्स और पिलो कवर्स वगैरह करके. अब एज ए कॉर्पोरेट आप जो भी अगर मान लो किसी को गिफ्ट भी करते हो, कोई आपके स्टूडेंट्स भी आते हैं, कोई भी आता है, तो हमने उसको सारा प्रोडक्ट जो है वो सखी के प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिया. तब आप देखिए एक टाइम पे हम CSR के थ्रू उनको हम एम्पावर कर रहे हैं, हम CSR का स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, उनसे प्रोडक्ट बनवा रहे हैं. वो तो मेरा CSR एक्सपेंडिचर है. अब उन्होंने प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट बेचा उसने कॉर्पोरेट को, तो उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ. मेरे जो कॉर्पोरेट को उन्होंने प्रोडक्ट बेचा, उसको रिप्लेस किसने किया, जो प्रोडक्ट मैं बाहर से खरीद के बेच रहा था. तो एक तरफ मेरा वो पैसा बचा, एक तरफ मुझे प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, एक तरफ उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है, और एक तरह मेरा CSR का बजट ऑप्टिमम और बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज हो रहा है।
राइट।
इस मॉडल में हमने सैकड़ों लड़कियों को जोड़ा, लेडीज को जोड़ा, और एक हमने फैशन का क्लस्टर बनाया अजमेर में।
अजमेर में
जब गए, हमारे पास में चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि हमें तकरीबन 60 लड़कियां चाहिए थी जो 60 गारमेंट 60 डेज में बनाए। अब वहां पे शिया और सुन्नी दो परिवार हैं।
ये क्या है सर?
जो मुसलमानों में शिया और सुन्नी होते हैं।
पर मतलब दो कम्युनिटीज
हैं। लेकिन जब आपको, आप एक बहुत अच्छे मोटिव से कुछ चीज शुरू करते हो, जब आपका थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है, जब आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर में आप कोई ऐसा काम करने जा रहे होते हो जिससे उनका भला हो या उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, तो मेरे को लगता है रिलीजन्स बीच में नहीं आते हैं। ऐसे ही शिया सुन्नी की जो जो बच्चियां थी वहां पे, वो बच्चियां जुड़ी, उन्होंने इकट्ठा बैठ के काम किया। 60 दिन में उन्होंने 60 गारमेंट्स बनाए फैशन के। उनको हमने हर मदद दी, निफ्ट से काफी लोग उनके साथ में जुड़े और बहुत प्रोफेशनल्स वहां पे उन्होंने आके उनको गाइडेंस दिया। छोटी छोटी चीजों को लेके हमने बनाया।
आपने कहा था कि चैलेंजेस आए थे, क्या चैलेंजेस आए थे सर?
चैलेंजेस उसमें ये था कि उन लड़कियों ने कभी फैशन गारमेंट्स बनाए नहीं थे। देखिए, आज भी SHG में अगर आप देखें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अगर आप, ऑल इंडिया अगर आप देखें भी, आपको मैक्सिमम ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ फीमेल गारमेंट्स पे काम करते हैं, और वो भी गिने चुने फीमेल गारमेंट्स। मेल गारमेंट्स पे SHG के जो लेडीज हैं, शायद ही अगर मैं बोलूंगा तो बहुत कम मिलेंगी आपको जो मेल गारमेंट्स पे काम करती हैं। और क्योंकि विमेन गारमेंट भी बहुत लिमिटेड बनाती हैं, तो उनको फैशन गारमेंट्स उनके लिए बड़ा नया चीज थी। तो एक उस कला को उनको हमने सिखाया, दूसरा हमने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पे उस कला को प्रदर्शन कर सके। तो 28 अक्टूबर 2015 को हमने जयपुर में एक बहुत बड़ा फैशन शो किया, जिसके अंदर में हमने इन्हीं लड़कियों के बनाए हुए कपड़ों को वहां पे नेशनल इंटरनेशनल मॉडल्स ने उसको डेमोंस्ट्रेट किया। जयपुर के इतिहास में, यानी भारत के इतिहास में बोलूंगा, ऐसा शो कभी नहीं हुआ जिसको एक चैनल ने पूरा एक घंटे का लाइव टेलीकास्ट किया। और राजस्थान के वहां पे मंत्री भी वहां पे बहुत मौजूद थे, वहां के ब्यूरोक्रेट्स बहुत मौजूद थे, फैशन के स्टूडेंट्स बहुत थे, डिजाइनर्स बहुत थे। और उसी शो के दौरान हमने आंगनवाड़ी की नई यूनिफॉर्म्स भी लॉन्च करी जो उन्हीं लेडीज ने बनाई थी।
अच्छा।
तो आप इसका सर्कल देखिए, यही गांव की औरतें जिनके बच्चे आंगनवाड़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो खुशी सेंटर है, यही औरतें अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म तैयार कर रही हैं। तो जो यूनिफॉर्म्स हम बाहर से लेते थे, वो अब ये लेडीज बना रही हैं,
घर पे ही हो जा रहे हैं।
तो वो यूनिफॉर्म ना सिर्फ एक कम रेट में मिल रही है, बल्कि क्वालिटी बहुत अच्छी है।
तो
ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि ये एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे। और यही मेरे को लगता है कि कॉर्पोरेट जब भी कोई CSR का कोई डिजाइन करता है, सबसे पहले इनकी मार्केट इंश्योर करो।
तो आपको सोशल चेंज मेकर भी कह सकते हैं सर।
राजस्थान ने, मैं बड़ा, मुझे बड़ी खुशी होती है, राजस्थान ने मुझे राजस्थान रत्न का एक अवार्ड दिया। और शाने राजस्थान के अवार्ड भी दिया। इंडिया टुडे से भी अवार्ड मिला, ZTV से भी अवार्ड मिला। तो कई बार आपको अवार्ड तो खैर आपका रिकॉग्निशन होता है, पर आपको ये खुशी होती है कि जो आप एफर्ट्स कर रहे हो, वो एफर्ट आपके रिकॉग्नाइज भी हो रहे हैं और उन एफर्ट से लोगों का भला हो रहा है।
बिल्कुल, और ये बहुत सेटिस्फेक्शन होता है सर इससे।
हाँ, आपको रात को आप एट पॉइंट ऑफ लाइफ, हाँ, मेरे को बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन आता है कि मैंने लोगों के लिए ना कुछ किया है, और वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है।
बिल्कुल सर। तो सर, आप बहुत अच्छे राइटर भी है, बहुत अच्छे लेखक है, स्टोरी टेलर है, तो ये शौक कैसे मतलब आया और कैसे आपने इस फील्ड में काम किया? अपनी कुछ लिखी हुई कविताएं सुनाए।
अरे बाबा। कविताएं, अच्छा। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखना काफी पहले शुरू किया था,
टाइम्स ऑफ,
हाँ, और मैंने काफी ऑथर्ड आर्टिकल लिखे, उनका एक एजुकेशन टाइम एक सप्लीमेंट निकलता है, और लिखता हूँ रेडियो वगैरह के लिए, पहले भी लिखता था, लेकिन
हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता
हूँ। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेता हूँ।
तो ये कमांड कैसे हुआ, क्योंकि एक लिखना और बेहतरीन लिखना एक राइटर के लिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखना?
अच्छा, एक बात बताइए, भावनाएं हिंदी में ज्यादा कम्युनिकेट हो जाती है या अंग्रेजी में?
मेरी तो हिंदी में भावनाएं ज्यादा होती है सर।
यही वजह है, आप एक हिंदी में जो आप जिस ढंग से किसी को समझा सकते हो वो कभी कभी अंग्रेजी में वो शब्द नहीं मिलते हैं।
राइट।
तो ये पक्का था कि आप जिस ऑडियंस को मैं कैटर कर रहा हूँ उसमें हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी एजुकेशन में दोनों लैंग्वेज किया हुआ है तो मेरे को हिंदी में ना तो टाइप करने में प्रॉब्लम था ना मेरे को लिखने में, तो हिंदी तो मेजर था ही था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप समझते हो कि शायद इंग्लिश में लिखोगे तो उसकी ऑडियंस वाइडर हो जाती है, बिकॉज हिंदी बेल्ट से आप एक दूसरी बेल्ट में भी चले जाते हो। तो मैंने अपनी पहली किताब लिखी मी विद इन माई सेल्फ, मोटिवेशन ऑफ काउंसलिंग करके, और वो अच्छी किताब चली। जिन पब्लिशर ने उनको उसको निकाला उसने 11 कंट्रीज में इस किताब को सेल किया, और वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। मेरा मनी मोटिव नहीं था तो वो मुझे बोलते थे कि पवन जी आप, मैं भैया करके बात करते कि भैया मैं किताब को सेल करूंगा, कमर्शियल में रॉयल्टीज वगैरह होती है। तो मैं उनको बोलता था रॉयल्टी तो मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को एडिशनल बुक्स दे दो बस, मेरा वही बहुत है। पर वो बुक काफ़ी अच्छी गली गई, ऑक्सफोर्ड में हमने यहाँ पे इसको लॉन्च किया। कर्नल कपूर हुआ करते थे जिन्होंने फौजी बनाया, और उन्होंने उस बुक को लॉन्च किया। और दूसरी मैंने किताब लिखी जिंक के ऊपर में, मेरी काफ़ी रिसर्च है उसमें। मैंने लिखा वी ऑल हैव जिंक इन आवर लाइव्स, उसके दो भाग हैं, एक भाग है गैल्वनाइजेशन बिजनेस और एक भाग है हेल्थ से रिलेटेड। वो किताब जो गवर्नर ऑफ राजस्थान है उनको हमने दिया, और बड़ी खुशी हुई उसमें एक उस किताब में रतन टाटा जी का भी एक ऑटोग्राफ है, एक कॉपी रतन उनके भी ऑटोग्राफ से है, और काफ़ी लोगों को उसको उन्होंने लिया। ये कलेक्शन आइटम था, मेरे को सेल नहीं करना था।
रतन टाटा जी की आप बात कर रहे हैं तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो उन्हें पसंद ना करता हो, तो उनके बारे में कुछ बताए सर।
देखो रतन टाटा जी के साथ एक बहुत छोटा सा एक इंट्रैक्शन है, जब हम एक बायोपिक बना रहे थे और उसमें उन्होंने भी आके बोलना था, तो बट बहुत ही सुलझे हुए और एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जिनका मैं मानता हूँ कि जिनका जिनकी प्रेजेंस और जिनका ऑरा वो बहुत अलग है। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा था और मुझे वो फोटोग्राफ या वो लम्हा आज भी मैं बहुत गर्व से महसूस करता हूँ।
बिल्कुल सर।
और मेरा उनसे उस टाइम पे बहुत थोड़ा इंट्रैक्शन हुआ, बट उस इंट्रैक्शन में मुझे ये पता लगा कि हम लोग ना फिल्म स्टार्स को अपना हीरो बनाते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि
He was the real hero.
ऐसे रतन टाटा जी जैसे और भी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको अगर आप अपना हीरो बनाएं तो आप आपका लेवल ऑफ ग्रोथ लाइफ में बहुत अलग हो जाता है।
बिल्कुल।
आपके अंदर में एक शालीनता आती है, मेच्योरिटी आती है, आप हम्बल बनते हो, आपका फोकस अलग होता है, आपका किसी जॉब को देखने का तरीका अलग हो जाता है।
बिल्कुल।
हम पैसे के पीछे भागते हैं पर ये लोग देश के लिए काम करते हैं,
तो
वो जो मोटिवेशन है वो शायद बहुत हद तक मेरे लिए सोशल प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए मेरे लिए काम में आती है।
बिल्कुल।
कि आई डोंट वर्क फॉर मनी देयर, आपको ऑर्गेनाइजेशन पे करती है, नहीं भी करे तब भी मैं आज भी मैं एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर में दो एनजीओस के उसमें हूँ मैं, और वो कम्प्लीटली ऑनरेरी पोजिशन है। मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, पर वो सेटिस्फेक्शन बहुत अलग लेवल से है।
जी।
आप देश के लिए काम करते हो।
तो सर आप अपनी कोई लिखी हुई 4 लाइन कविता सुनाए जो आपकी फेवरेट हो।
अच्छा चलिए मैं सुनाता हूँ, निकालना पड़ेगा मेरे को एक बार। आप बचपन में एक पेंसिल हम करते थे तो उसको चबाते रहते थे तो एक दिन ऐसे ही मैंने लिखा, मैं आपको वैसे ही पढ़ देता हूँ।
जी जी।
कहानी का इसका पोएट्री का टाइटल है पेंसिल का सिक्का। बचपन की बात है, स्कूल की बहुत याद आती है, वो दांतों से चबी पेंसिल बहुत कुछ याद दिलाती है। वो लिखते थे हम कम, चबाते थे ज्यादा, टीचर भी करती थी मना पर क्या फायदा, बिना पेंसिल चबाए नहीं लिखा जाता था, छोटी भी हो जाती थी तब भी मन मचलाता था, सवालों का पर्चा बवाल जैसा लगता था, ये पेंसिल ही थी जिस पर मुझे भरोसा था। एक दिन कॉपी से पूछ ही लिया जिद करके, क्या लगता नहीं बुरा तुझे टूटी चबी पेंसिल से मिलके। बोली कॉपी, अपना है गजब रिश्ता, समझ तभी आता है जब ये सिक्का घिसता। ना चाबोगे पेंसिल तो लिखा कैसे जाएगा, ये जिंदगी की दौड़ है, पढ़ा लिखा ही काम आएगा। चाहे चबी हो नन्हे दांतों से, पर एक दिन पता चलेगा ये जिंदगी का सफर है, तेरा सिक्का तभी जमेगा।
वाह, बहुत खूबसूरत लाइन है सर, बहुत खूबसूरत लिख लेते हो आप। तो सर, जैसे आपने भावनाओं की बात कही, तो ये कहीं ना कहीं इसमें आपकी भावनाएं छलक रही है।
हाँ, ये है कि ये मान लीजिए पेंसिल एक स्ट्रगल ही करती है
जी। तो आपके फेवरेट लेखक कौन है सर?
मेरे अगर मानो तो मैं गुलजार साहब को बहुत मानता हूँ, उनकी गहराई बहुत मानता हूँ।
जी,
और मुझे लगता है कि शायद एक कोई आत्मा से अगर कोई लिखता है ना, तो गुलजार साहब हैं, दूसरे जावेद अख्तर साहब हैं।
बहुत बेहतरीन,
उनका सोच और उनका एक शब्द के अंदर में उनके मतलब बहुत अलग निकल जाता है। और मुझे फिल्म फेस्टिवल के दौरान में मुझे उनके साथ में बैठने उठने बात करने का मुझे बड़ा मौका मिला है। तो मैं भूपेन हजारिका साहब को बहुत मानता था।
जी,
ये दिल हूँ मुम करे घबराए, जिन्होंने लिखा एक अलग, एक सोच अलग है।
बिल्कुल सर। तो आज के टाइम में जो लेखक है सर, वो काफ़ी मतलब फील वाली चीज़ें नहीं आती आजकल। जैसे गाने भी आ रहे हैं, जैसे कि सुनो वो, लेकिन वो ऊपर ऊपर सुनो ऊपर ऊपर ही पार हो जाते हैं, मन की गहराइयों में नहीं उतरते हैं।
आप पूजा जी देखो ना, जनरेशन अलग है।
जी
ठीक है, अब कुछ लोग आज भी देवानंद के गाने सुनना बहुत पसंद करते हैं, और उन गानों के अंदर में एक बड़ी शालीनता और एक एक बहुत ही अर्थ भी होता था, मतलब भी होता था, लेकिन उसका कहने का अंदाज बहुत अलग
शब्दों के पीछे गहराई होती थी।
हर सेंटेंस में एक मतलब होता था। आप पुराने किशोर कुमार के गाने देखिए, जिसमें वो अपने कई हरकतें करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी उसमें एक मैसेज होता था। मैंने उनके पीछे गाने देखे मैंने किशोर कुमार जी के, जिसमें वो इनकम टैक्स वाले के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी आधी कमाई टैक्स में निकल जाती है, बाकी बीवी खा जाती है। पर कहने का तरीका बहुत अलग है। शब्दों के एक, मैं बोलूं तो, एक गलत मतलब नहीं निकलते थे। आज आपके गानों के अंदर में
डबल मीनिंग,
आप कभी कभी आप परिवार के साथ में सुन भी नहीं सकते हैं।
राइट,
तो वो एक, जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ ह्यूज चेंज। आज भी आप अगर सुकून अगर आपको चाहिए
तो आप अपने गाने सुनने,
हेमंत कुमार के, मन्ना डे के, मुकेश जी के, किशोर कुमार के, इनके आप गाने लगा लो, आप एक गाड़ी के अंदर में आपको, या वैसे भी आपको एक अलग से तसल्ली और एक सुकून मिलता है।
एंड सर, अगर एआई की बात करें तो एआई आज के टाइम में पोएम भी जनरेट करके दे दे रहा है। तो आपने जैसे कहा भावनाएं, तो भावनाओं से हम कविता लिखते हैं, हमारे विचारों से लिखते हैं, लेकिन ये जो एआई है, ये इसके अकॉर्डिंग जो कविताएं आ रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
आपने किसी को बिना आंसू के रोते देखा है? कि मैं बहुत फूट फूट के रोया मगर आंसू नहीं आया, दैट इज एआई। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, लिख तो देगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। मैं बहुत खुश हूँ, लिख देगा लेकिन दिखाई नहीं देगा,
उसमें वो भाव नहीं चल गएंगे।
बहुत लोग डिबेट करते हैं। इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले इस चीज को डिबेट कर रहा था कि एआई कम्युनिकेशन के अंदर में हमारे कम्युनिकेटर्स को, कम्युनिटी को, चाहे मेरे बहुत सारे हो सकता है मेरे दोस्त कम्युनिटी के माने भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक ओरिजिनल कंटेंट राइटर जो लिखता है वो एआई नहीं लिख सकती। लेट्स एक्सेप्ट, मैं मानता हूँ, आप लोग नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिल्कुल,
लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप बोलें गुलजार साहब को या आप जावेद अख्तर साहब को कि आप एआई के थ्रू अपनी पोएट्री बना दीजिए, बनाएंगे क्या?
बिल्कुल नहीं, और ना ही एआई के चलते उनके लेवल की कविताएं लिख सकता है,
पॉसिबल ही नहीं है। मैन हैज मेड द मशीन, आप बोलो मशीन जो है वो मैन के इमोशन ले आए, तो बहुत मुश्किल है,
तब भी नहीं हो सकता।
तो वो एक बहुत बड़ी डिबेट है, चलती है, और मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ कि वो इसके ऊपर में मानेंगे नहीं, बट ठीक है, उनकी अपनी इच्छा है।
एंड सर, फैमिली की भी बात हो रही थी कि फैमिली के थ्रू ही कहते हैं बच्चे सीखते हैं, चाहे करियर लेवल की बात हो, चाहे आपने अपने कम्युनिकेशन लेवल की बात कही, तो फैमिली का एक क्या रोल होता है आपके अकॉर्डिंग? फैमिली क्या है?
देखिए, फैमिली ना एक परिवार के एक आदमी को, एक जने को एक बीज बन के जमीन में बोना पड़ता है अपने आप को। किसी एक व्यक्ति को एक ऐसी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि मैं इस फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और मैं अपने स्वार्थ को छोड़ के, अपनी खुशी को छोड़ के, मैं फैमिली की ओवरऑल खुशी और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा।
ठीक है।
पर जब वो इंसान अपने आप को बीज की तरह से बोता है तो फैमिली के बाकी सदस्यों का ये फर्ज बन जाता है। फिर जैसे बीज जो है वो पौधा बनता है, फिर आपको उसको खाद डालनी पड़ती है, नर्चर करना पड़ता है, समय पर सब चीजें होती हैं। जैसे पतझड़ आती है, उस पौधे के भी पत्ते झड़ते हैं। एक एक कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं वो उस वक्त में उस पौधे को संभालते हैं, बड़ा करते हैं। जब वो पौधा एक पेड़ बन जाता है तब वो सारे परिवार को छाया देता है, फल देता है, सुरक्षा देता है। बस फैमिली का सिस्टम यही है।
तो आप कह सकते हो कि सपोर्ट सिस्टम किसी भी सिचुएशन में, चाहे अच्छा सिचुएशन हो या बुरा सिचुएशन हो, सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए।
बिल्कुल। अगर उस पौधे में किसी ने, परिवार के सदस्य ने मान लीजिए उसको खाद डालनी नहीं डाला, पौधा सूखेगा।
बिल्कुल।
जब पतझड़ के टाइम पे अगर उसको नहीं सपोर्ट किया तो भी पौधा सूखेगा, तो नुकसान उस परिवार का होगा। तो परिवार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि जो इंसान अपने पूरे परिवार को उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है और अपनी सेक्रीफाइस भी कर रहा है, उसका ध्यान रखना
सारे
परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है, तभी वो परिवार है। नहीं तो फिर परिवार कुछ है ही नहीं ना।
बिल्कुल सर। एंड सर, आपकी भगवान के प्रति भी बहुत ज्यादा आस्था है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आप भगवान के प्रति जुड़े हो, या बचपन से ही आप भगवान के साथ आस्था में रहे हो?
देखो, मैं सनातनी हूँ, बिल्कुल क्लियर है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि ईश्वर जो है वो जब आपको वो स्थान देता है तो आपको भी ईश्वर को एक ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर आप आपका पूरा संरक्षण ईश्वर कर सके। और भगवान में आस्था रखना, एक आप ऐसी शक्ति में आस्था रख रहे हो जिस शक्ति को आप महसूस करते हो।
बिल्कुल।
मेरी एक छोटी सी कहानी है, मैं उससे आपको समझ में आएगा।
जी जी।
एक छोटा सा बच्चा था जिसने जो एक दिन जिद करके मंदिर चले जाता है और मंदिर जाके वो कहता है मुझे आज शंकर भगवान से मुझे बात करनी है। तो बच्चा बैठा रहता है भूखा प्यासा। अब भोलेनाथ जो है वो देखते तो हैं, तो उन्होंने देखा, उन्होंने उठा के नारद जी को बोला, नारद जी ये मंदिर में एक बच्चा बैठा है, वो जिद करके बैठा है कि मुझे भोलेनाथ से बात करनी है, आप जाओ उसको समझाओ थोड़ा कि भाई क्या समस्या है, क्या पता करो। अब नारद जी उस बच्चे से मिलने जाते हैं, बच्चा जिद के पक्का बैठा है कि भाई नहीं,
मुझे
तो भोलेनाथ से ही बात करनी है, आप क्यों आयो, कि उन्होंने मुझे भेजा है, कि नहीं वो खुद नहीं आ सकते क्या, कि नहीं तुम बताओ, मैं तुम्हारी समस्या जाके भोलेनाथ को बताऊंगा। तो बच्चा कहता नहीं, मुझे तो उन्हीं से बात करनी है और मैं आज जिद करके बैठा हूं, ना मैं खाऊंगा पीऊंगा कुछ नहीं करूंगा। और वो आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठा है। नारद जी वापस जाते हैं, भोलेनाथ को बताते हैं। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वो बच्चे के सामने, बच्चा आंख बंद करके बैठा होता है, बच्चे के सामने आके वो दर्शन देते हैं, बच्चे की आंख बंद है। तो पूछते हैं बच्चे से, बता क्या बात होगी, तुम मुझे इतना याद करोगे? तो बच्चा कहता है कि हे भोलेनाथ, मैं घर में सबसे छोटा हूं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, मैं अपनी कहानियां किसको सुनाऊं, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है। तो उन्हें बोला हाँ ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, तो मैं क्या करूं, कि नहीं आप मेरी बात सुनो। तो उन्हें बोला ठीक है, पर मैं वो बच्चा बोलता है कि पर मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगा कैसे, तो मतलब आप तो इतनी सृष्टि को देखते हो, आप कैसे पहचानोगे कि ये मेरी बात है और मैं बोल रहा हूं, आप मेरी कहानी सुनो। तो भोलेनाथ अपने दिल पे हाथ रखते हैं और एक छोटा सा दिल निकाल के उस बच्चे के दिल में रख देते हैं। तो बोलते हैं देखो, एक तुम्हारा दिल है, एक आपके दिल के पीछे एक छोटा दिल है, तो जब भी तुम्हें मुझे बात करनी हो तुम अपने दिल पे हाथ रखना और मेरा नाम लेना और तुम मुझसे बात करोगे। ये कह के भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। बच्चा आंखें खोलता है, वो देखता है कि भोलेनाथ तो अपनी जगह पे बैठे हैं, पर उसको लगता है कि उसकी कम्युनिकेशन हो गई है, वो अपना नॉर्मल हो जाता है। और जब भी उसका मन करता वो ऐसे हाथ रखता, आंख बंद करता, अपनी पूरी कहानी सुनाता, भोलेनाथ सुन लेते। एक दिन नारद जी पहुंचे वापस कि भोलेनाथ ये आपने क्या कर लिया, आपने इतने बच्चों में दिल बांट दिया, आप मतलब आपने एक नया शुरू कर दिया है। तो उन्होंने बोला देखो इन बच्चों को, ये बच्चों के साथ में पहले भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा, लेकिन कभी कभी इंसान जो है उसको शायद लगता है कि मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, मैं उसकी सुन नहीं रहा, या वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा। तो ये जो छोटा दिल है ये सिर्फ एक निमित्त मात्र है। मैंने ये उनको ये विश्वास दिलाया है कि भाई मैं था हूं और हमेशा रहूंगा और मेरे लिए तुम सब बराबर हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम ईश्वर से जब कम्युनिकेट करने के लिए बैठते हैं तो ईश्वर भी सुनता है,
100%।
पर आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, हर वक्त अपनी वो एप्लीकेशन लगा रहे हो तो नहीं होता,
डिमांड्स की एप्लीकेशन।
और दूसरा मेरा मानना है कि ईश्वर भी ये बोलते हैं कि जो मैंने दिया उसमें खुश रहो, जो दूंगा उसमें भी खुश रहना। तुम्हें अगर मैं किसी टफ टाइम से गुजार रहा हूं तो ये मान के रखना कि मैं तुम्हें एक ऐसे वक्त के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं जो तुम्हारी ये स्ट्रगल तुम्हारे काम आएगी।
बिल्कुल 100% राइट।
तो मैंने लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल बहुत सारे चैलेंजेस झेले हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि जैसे एक मछुआरा जब फिशिंग करने नहीं जाता तो उस वक्त में अपना जाल ठीक करता है, तो मेरा भी ये मानना है कि अगर आपका टाइम डाउन है या आप स्ट्रगलिंग डेज में हो तो वो टाइम आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रिवाइव करने के लिए, अपने स्किल्स को शार्प करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको जरूरत पड़ेगी।
बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मोरल ऑफ द स्टोरी आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान जो है हमारे अंदर ही बैठे हैं, हमारे दिल में ही है, हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं।
मेडिटेशन यही है।
बिल्कुल।
आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करके आप अपनी इंद्रियों को अलाइन करते हैं, आप लिटरली बात कर लेते हैं।
एग्जैक्टली 100% ट्रू।
तो मैं ये मानता हूं कि मैंने अपना घर है, घर में मैंने एक कमरे में सिर्फ मंदिर बनाया, ये मान के चलता हूँ ईश्वर ने जो दिया सब मतलब उनकी कृपा से है, तो उनका स्थान घर में हमेशा रहेगा, रहता रहा है और आगे भी रहेगा।
मतलब मेडिटेशन को तो मैं भी काफी मानती हूँ कि आप एक अलग लेवल की वाइब्स आप फील कर सकते हैं, कनेक्शन फील कर सकते हैं।
आपने देखा कभी किसी बच्चे को रुद्राक्ष की माला लेके मेडिटेशन करते हुए?
नहीं।
जो लोग समझते हैं आप माला का जाप कर रहे हो तो लोग आपको प्रिमिटिव बोलेंगे, पुराने ख्यालात के बोलेंगे, पर ऐसा नहीं है। मेरे को रुद्राक्ष से या माला से मुझे मेडिटेट करते हुए, मैं अगर मोटा मोटा मानूं तो 30 साल से ऊपर हो चुका है, 35 साल हो गया।
एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम है कि आजकल के टाइम में लोग ज्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी संस्कृति से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। आपकी जो जर्नी रही है बहुत ही चैलेंजिंग रही है, ठीक है, तो कोई ऐसी घटना जो आप कभी भूल कर भी नहीं भूल पाते हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो?
हाँ, एक इंसिडेंट है, 29 अक्टूबर 2005 सोईनगर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था
जी,
60-70 लोग मारे गए थे। तकरीबन 6 बजे की बात है, मैंने अपनी वाइफ को सोईनगर की जो सब्जी मार्केट है मैंने वहां उसको ड्रॉप किया।
दिवाली का टाइम रहा था उस टाइम में,
दिवाली का टाइम था, उस वक्त में बहुत चल भी रहा था ब्लास्ट का। तो जहां पे जिस शॉप पे ब्लास्ट हुआ उसको उसी की साथ वाली शॉप से उसे कुछ चेंजेस कराने थे, और उस तक दुकान तक पहुंचने के लिए सोईनगर मार्केट आप गए होंगे तो तकरीबन 15 मिनट के करीब लगता है, और उसी 15 मिनट के अंदर में उस वो ब्लास्ट हुआ। तो मैंने 6 बजे छोड़ा, 6:15, 6:20 के आसपास में ब्लास्ट हुआ। जब तक मैं घर पहुंचा छोड़ के तब तक न्यूज़ आनी शुरू हुई थी, और मेरा बेटा बहुत छोटा था, 18 करीबन 1.5 साल का भी नहीं होगा, मेरी बेटी से 8 साल बड़ी है। तो मुझे एक बार समझ में नहीं आया कि सरोजिनी नगर में ब्लास्ट हुआ है, तो एकदम मैं बेटे को मैंने पड़ोसी को दिया, मैंने डॉटर को टीवी पे बैठाया, मैंने कहा बेटा इसको देखते रहना टीवी, और तब मोबाइल फोन आ चुके थे, और मैं सरोजनगर वापस मार्केट में वापस भागा। तो सब कुछ जाम हो चुका था, सारी एम्बुलेंसेस थी बहुत ज्यादा, किसी को मैग्नीट्यूड का नहीं पता था कि क्या हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हुआ था, लेकिन न्यूज शुरू हो गई थी, हैरानी वाली बात थी। तो जब मैं पहुंचा वहां पे, पहुंचने में जब मैं रास्ते में था, पूरा ट्रैफिक जाम था, तो उस ट्रैफिक जाम में मेरे को, मैं जो दिमाग में ख्यालात वो चल रहा था कि मतलब लाइफ कैसे टर्न लेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा,
बहुत सारी चीजें
पता नहीं, और ये नहीं पता था कि ब्लास्ट कहाँ हुआ, ये भी नहीं पता था। तो दिमाग इतना दौड़ रहा था कि आप ड्राइव कर रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आप कैसे चल रहे हो, रास्ता ट्रेवल कर रहे हो। फॉर्चुनेटली वहां पे एक PCR थी, और उससे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ पांव जोड़े बिल्कुल, कि भैया मेरे को जाने दो, मेरी, मैं वाइफ को छोड़ के आया हूँ। और उसने बताया मेरे को कि बहुत बुरी हालत है, कम से कम 50-60 लोगों के मरने की वो है। उन्होंने मुझे बताया कि ब्लास्ट हुआ कहाँ। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि ब्लास्ट वहाँ हुआ है, वहाँ पे एक कोने में एक दुकान है, तो फ्राइड आलू पकौड़े वगैरह की कोई दुकान है, तो उसकी बगल वाली दुकान थी जहाँ को जाना था। तो जब मैंने टाइम वाइम पूछा तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये अगर यहाँ से वहाँ गई हैं बचने के चांसेस नहीं है। तो मैं कैसे भी करके मैंने गाड़ी जो है वो सूर्यनगर की मार्केट के बाहर लगाई, पहुंच गया मैं, पहुंच के मैं सीधा उस जगह गया, पूरी मार्केट प्लेन, वो जो एरिया था ब्लॉक पूरा प्लेन हो चुका था, बिल्कुल सफाट हो गया था, बहुत भारी ब्लास्ट था, और लाशें बिछी हुई थी, काफ़ी डेड बॉडीज थी, कब लोगों के सामान थे, सब कुछ थे। तो मैंने उस सामान में ढूंढना शुरू किया। वो टाइम ये था कि आप ढूंढ रहे हो लेकिन आप चाहते नहीं हो कि कुछ मिले। तो एक दिमाग में था कि आप हर छोटी छोटी चीज चेक कर रहे हो, ये इंश्योर करने के लिए कि ये आपकी वाइफ की नहीं है,
नहीं है।
तो मैंने ऐसे ढूंढता रहा, बहुत देर तक ढूंढता रहा, अंधेरा होने शुरू हो गया था, और मैं आप मुझे याद है, मैं चप्पल पहनी हुई थी, तो चप्पल से मैं भाग नहीं पा रहा था, तो मैंने चप्पल हाथ में पकड़ ली थी। वहां मुझे कुछ मिला नहीं, तो उसके बाद मैंने सूर्यनगर मार्केट के चक्कर लगाना शुरू किया, एक दुकान से पूछता, दूसरे दुकान में पूछता, उनका नाम बुला रहा था। इट वॉज डिवास्टेटिंग, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं, भगदड़ मची हुई है, बहुत बुरी हालत है, लोग चिल्ला रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं ऐसे मार्केट के मैंने कई चक्कर लगाए, मेरे को ना वो दिखी, ना वो मुझे मिली, और ना उनका कोई फोन आया, और मेरे को मेरे घर से फोन आ रहे थे, सब आ रहे थे। अब क्या होता है, आपके कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जिनको समझ नहीं होती, अकल नहीं होती कि ऐसे टाइम पे क्या बोलना चाहिए। किसी ने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि जाके मॉर्चरी में चेक कर लो, पर और दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, बचपन से लेकर, शादी से लेकर, बच्चे से लेकर, बच्चे बड़े होंगे क्या होगा, और उन सब में मैंने ये नहीं सोच पा रहा था कि मेरा क्या होगा। तो करते 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 भागते भागते मैं एक सूर्यनगर की एक ऐसी दुकान पे पहुंचा जो सूर्यनगर की मार्केट की उस जगह से सबसे कोने वाली दुकान है। मैंने उसके वहां पे जाके पूछा, मैंने कहा यार तूने वाइफ को देखा था, क्योंकि हम सूर्यनगर में बहुत टाइम रहे हैं तो हमें लोग बहुत जानते हैं। तो उसने बोला कि भैया दीदी तो यहाँ थी, दीदी यहीं थी। तो मैंने कहा कब थी, तो उसने बताया कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो पहले लगा कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, तो वो मेरे यहीं पे थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि ये क्या हुआ। तो मैंने बोला कि दीदी सिलेंडर शायद फटा है, वो जो पकौड़े वगैरह वाली दुकान है वहाँ पे शायद सिलेंडर फटा है। तो उन्होंने बोला कि उनको वहाँ पे जाना है, तो मैंने बोला मत जाओ क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं है, वहाँ पे मत जाओ आपका काम अगर खत्म हो गया तो आप घर निकल जाओ। तो अब मुझे ये तसल्ली हो गई थी कि उस टाइम पे वो थी नहीं, तो फिर गई कहाँ। तो मैंने और ढूंढना शुरू किया, चप्पल हाथ में भाग रहा हूँ मैं, बुरे हाल हैं,
जब तक देख ना लो आग से तब तक तसल्ली नहीं होती।
हाँ मतलब आपको कुछ, आप मतलब आप एक धुंध में भाग रहे हो, ना आप थक रहे हो, ना आपको सांस चढ़ रहा है, आपको कुछ नहीं होना। तो अब घर से कोई फोन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं करते 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 मुझे ये लगा कि शायद हो सकता है घर निकल गई हूँ। तो मैं जैसे ही गाड़ी गया, मेरी गाड़ी के साथ ही ये खड़ी थी, तो एक लगा कि एकदम भगवान ने एकदम मतलब बचा लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनको भी कुछ पता नहीं लगा कि क्या हुआ क्या। मैंने उनको बोला फटाफट गाड़ी में बैठो, निकलो यहाँ से,
नया जीवन मिला था।
हाँ, तो उनको भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्यों मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। रात को जाके उनको जब उन्होंने देखा तो उनको बुखार हो गया। तो मुझे याद है कि हम चारों एक बेड पे सो रहे थे, कि हम हाथ पकड़ के सो रहे थे, कि ये समझ में आ रहा था कि जब कोई इंसान अगर मान लो छोड़ के चला गया है, तो वो एक दिन परिवार के साथ में अपना एक दिन बिताता है फाइनली ईश्वर के पास में विलीन होने से पहले। तो हम इस बात पे यकीन कर रहे थे कि नहीं, ये वो नहीं है, ये जिंदा है और ये कल ईश्वर से विलीन होने के लिए नहीं जाएगी। तो पूरी रात हमारी वैसे कटी।
बहुत ही डेंजर सिचुएशन था।
हाँ, सिचुएशन नहीं होता कि आपको लगता है कि मतलब बच्चों का क्या होगा, वो तो एक अलग चीज है, पर आपका खुद का क्या होगा। आपकी पूरी लाइफ उस टाइम पे 2-2.5 घंटे में आपकी पूरी लाइफ आपकी निचुड़ जाती है। और खास तौर से जब आपको फोन आके कोई ये बोले कि मॉर्चरी में चेक कर लो, उसमें चेक कर लो। मैं पूछा था
मतलब
लोग कहाँ
पल
गए।
में दुनिया उजड़ने के जैसा था सब कुछ।
हाँ, मतलब आपको यकीन ही नहीं था ना, क्योंकि मुझे यकीन था ही नहीं कि वो दाहिने हाथ की दुकान पे जाएंगी। वो सीधा जाने की बजाय दाएं मुड़ गई। अगर वो सीधा चली जाती तो बचने के चांस ही थे।
के चांसेस नहीं।
मैंने ये कहानी अपनी जो किताब थी मेरी पहली मी विद इन माई सेल्फ में, मैंने इस कहानी को पूरा लिखा। कि कुछ चीजें आप शब्दों में बहुत अलग से एक्सप्लेन कर लेते हो जब आप लिखते हो, शायद वो शब्द बोलने में आपको थोड़ी तकलीफ हो।
सर, एक लीडर को अपनी टीम को कैसे गाइड करना चाहिए?
लीडर हमेशा ना एक इट्स इज पार्ट ऑफ द टीम। जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट का एक कैप्टन भी होता है। कैप्टन के ऊपर में जिम्मेदारी ये होती है, अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा रन कैप्टन मारेगा अगर वो बैट्समैन है तो। अगर वो बॉलर है जैसे कपिल देव जी हुआ करते थे, कि पहली विकेट चटकाएंगे तो कपिल जी। तो एक कैप्टन के अंदर में जो एक पूरी टीम का एक जो फेथ होता है, उस फेथ को समझकर कैप्टन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम विच हैज टू प्ले। नॉर्मली एक ये थॉट प्रोसेस बन जाता है कि एक जो लीडर है ना, इज ओनली फॉर एडवाइस। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि अगर आप प्रोफेशन में भी हैं, तो एक लीडर के अपने KRAs और अपने KPIs होने चाहिए, जिसको वो खुद ड्राइव करे बिना किसी हेल्प के। ही इज पार्ट ऑफ द टीम, परफॉर्मर है वो। वो एक क्रिकेट मैच में एक दर्शक नहीं है जो एक छक्के या चौके पे ताली बजाएगा। दैट इज नॉट हिज जॉब। ही हैज टू प्ले। अगर वो प्ले नहीं करता या एक मैच में रन स्कोर नहीं करता या अपने KPIs डिलीवर नहीं करता, देन हाउ कैन ही एडवाइज अदर्स। तो लीडर को हमेशा यह समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है परफॉर्मेंस के लिए, खासतौर से सेल्फ परफॉर्मेंस के लिए।
सबसे पहले उसे खुद ही परफॉर्म
करना है, ताकि जो उसकी टीम है वो मोटिवेट हो और वो समझे कि नहीं, वी हैव टू परफॉर्म लाइक हिम। तो उसकी परफॉर्मेंस एक रोल मॉडल बनना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको टीम के लिए एक ऐसा कॉन्फिडेंस का सिंबल होना चाहिए जिसके ऊपर में टीम को 100% फेथ हो। अगर वो बोले कि भाई ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करनी है, तो वो एक सक्सेस स्टोरी का उसका हिस्सा होना चाहिए। तो फेथ के मामले में ही शुड एंजॉय 100% फेथ ऑफ हिज टीम। डिस्पैरिटीज अवेलेबल होना चाहिए। कम से कम एक एडवाइजर का और एक कंसल्टेंट का रोल उसको नहीं प्ले करना चाहिए, मेरी तरफ से मैं ये मान के चलूं।
सर, ग्लोबली आपको एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अभी आप जो न्यू जनरेशन कम्युनिकेशन के फील्ड में आ रही है, उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
देखिए, कम्युनिकेशन के अंदर में आपके वर्टिकल्स होते हैं। कुछ वर्टिकल्स आपके बहुत प्रिय होते हैं तो आप उसको ज्यादा फोकस करते हो। कुछ वर्टिकल्स के ऊपर में आपका फोकस कम रहता है। पर ओवरऑल स्ट्रेटजी में आपके सारे वर्टिकल्स को सबको आगे आना चाहिए। जैसे एक वर्टिकल आपका प्रेस और मीडिया होता है, एक वर्टिकल आपका पब्लिकेशन होता है, एक आपका लीडरशिप ब्रांडिंग होता है, एक आपका सोशल मीडिया है, ऐसे एक आपका CSR कम्युनिकेशन है, एक आपका सस्टेनेबिलिटी कम्युनिकेशन है। अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं प्रेस और मीडिया में हम सबसे अच्छा रहें तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी एक स्कोरिंग होती है। लेट्स से अगर आप उसको एट ए स्केल ऑफ 10 में अगर आप उसको 8 स्कोर भी करते हो और आपके बाकी वर्टिकल्स नहीं चल रहे हैं तो आपका स्कोरिंग फिर भी 2 या 3 से ऊपर 10 में से जाएगा नहीं। तो ये जरूरी हो जाता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए आप अपने हर वर्टिकल को ऊपर मूव करो, हर वर्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करो, हर वर्टिकल को डेवलप करो, तभी जाके आप एक पूरे 360 डिग्री कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर बन पाओगे। वरना आपकी ब्रांडिंग ये होगी कि ये आप भाई इंटरनल कम्युनिकेशन देख सकता है, एक्सटर्नल नहीं देख सकता, ये पब्लिकेशन देख सकता है, ये इंटरनल कम्युनिकेशन देख सकता है, इसको सोशल मीडिया आता है, इसको मीडिया दूसरा नहीं आता है, इसको कंटेंट राइटिंग आती है लेकिन ये नहीं कर सकता। अगर आपको इस फील्ड में ग्रो करना है तो आपको 360 डिग्री अप्रोच को अडॉप्ट करके अपने हर वर्टिकल को ऑपरेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है, डू नॉट आस्क पीपल टू कम एंड टेल यू व्हाट यू शुड डू। मैनेजमेंट को आके आपको ये नहीं बताना पड़े कि भाई तुमने उसका क्या किया, तुमने इसका क्या किया। आप एक ब्रांड के कस्टोडियन हो, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस ब्रांड को ना सिर्फ एक अच्छी तरह से ग्रो करो बल्कि इसको बचा के भी रखो। तो आपको तो अपने आप ही इस चीज के ऊपर में अपनी स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना चाहिए।
बिल्कुल।
आपकी सीनियर मैनेजमेंट है वो आपको इनपुट देगी, आउटपुट आपको निकालना है। क्या एज ए प्रोफेशनल आपको इनपुट की जरूरत है? होगी, लेकिन जब आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग खत्म कर ली होगी। आप अगर वो करोगे जो आपकी मैनेजमेंट चाहती है सिर्फ, तो आप मैनेजमेंट को खुश करने के लिए काम कर रहे हो।
बिल्कुल।
आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे हो।
राइट।
तो ये चीज बात को ध्यान में रख के आई थिंक हर कम्युनिकेटर को अपनी स्ट्रेटजी अलग से बनानी चाहिए।
और वीडियो एंड करने से पहले सर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे यंगस्टर्स को?
देखो लाइफ इज नॉट इजी, और मेरा अपना मानना है कि आप लाइफ के अंदर में अपने टाइम को आप इस तरह से यूटिलाइज करो कि कल को आपको ये ना रिपेंट हो या आप ये पछतावा नहीं करो कि शायद मैं उस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करता तो आज मैं यहाँ होता। क्योंकि वक्त एक बार हाथ से निकल गया तो रेत हाथ से फिसल जाती है, दोबारा मुट्ठी में नहीं आएगी। और दूसरा, अपने आप को किसी लेवल पे जाना है तो अपने आप को उस लेवल के लिए प्रिपेयर करो। आज के आने वाले टाइम में कोई भी चीज आपकी हथेली पे नहीं आएगी, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप जितने अच्छे एफर्ट्स करोगे आप शायद उतने सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आप एक पिंजरे में रह के उड़ना नहीं सीखोगे, तो आपको पिंजरे से अपने आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो वो सिलेबस आपका 2-3 साल पुराना है। जब तक आप उस स्कूल से बाहर आओगे दुनिया कम से कम 6-7 साल आगे जा चुकी होगी,
चीजें बदल चुकी होगी।
तो आप अपने स्कूल के लेवल से ही अपने आप को अपडेट रखना शुरू करो। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज पढ़ो, इकोनॉमी के बारे में जानो, डेवलपमेंट जानो, डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में जानो, एक ओवरऑल जो ग्लोबल एनवायरनमेंट बन रहा है उसके बारे में जानो। अपने आप को प्रिपेयर करो। आप अगर उस प्रिपरेशन से आगे बढ़ोगे तो जरूरी है कि आप लाइफ के अंदर में एक अच्छी जगह पे पहुंचोगे। अगर आप सोचोगे क्लास 12th के बाद में मेरे को कॉलेज करना है, कॉलेज में मुझे कुछ कोर्स करना है, उसके बाद में मैं सोचूंगा क्या बनना है, तो फिर आप जिंदगी से 10 साल पीछे चल रहे हो।
राइट।
सिंपल।
तो व्यूअर्स, बहुत सारी बातें आज हमने जानी पवन कौशिक सर से। आज हमने बहुत सारी उनके अनुभव से बहुत सारी चीजें सीखी। आपको ये वीडियो कितनी रेलिवेंट करी, कितनी हेल्पफुल रही हमें जरूर बताएं।